ये जो हम देख रहे हैं ये हमने पहले भी कभी ना कभी देखा होगा। हम इस समय में सबके सब यात्री हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, इस यात्रा में जा रहे हैं। यहाँ पर हमको देखना है क्या सीख सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं, और उसके बाद हम वापस अपने घर जाते हैं। और अब हम 1951 के खत्म होने पर नए साल का स्वागत करते हैं, और हर दिन के लंबे होने पर राजा की ताकत बढ़ती जाती है, और अब हम इसे समाप्त करते हैं इस उद्धरण के साथ, राजा लंबे समय तक जीवित रहें। अच्छा था ये वीडियो, और इससे जो मैसेज मिला कि हम ये यात्रा कर रहे हैं, हम सब यात्री हैं, और क्या ये आपको कुछ याद दिलाता है? कितना सुंदर मैसेज है कि हम कैसे स्वतंत्र रह सकते हैं और कैसे सच्चे संरक्षक रह सकते हैं और इनसिक्योरिटी असुरक्षितपन से दूर हो सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जो ये डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस है, उन सब से हम दूर रह सकते हैं, ये अगर हम अपने माइंड में, अपने मन में इसको पक्का कर लें। ये कि हमारा जो शरीर है वो हमारा एक चोला है, कॉस्ट्यूम है, कि हम इसे छोड़कर हम अपने वापस अपने घर जाएंगे। यहाँ हम खेलने के मकसद से आए हैं और फिर वापस अपने घर जाएंगे, तो ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता हमको देती है। और आपको याद होगा कल हमने बात करी थी अदृश्य यात्री की, और वो इससे मिलता जुलता है, ये हमको कल वाला सारा जो सेशन था उसकी याद दिलाता है। और आपको होमवर्क मिला था, आपने उसको किया होगा, और अगर आपके पास कुछ प्रश्न है उस पर आप इस अपनी भाषा में इसको टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स पर। आशा करती हूँ आज का सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। तो अभी हम प्रशांत भाई का स्वागत करते हैं। प्रशांत भाई सबको विश कर रहे हैं, और उनको अच्छा लग रहा है कि सबके सब वापस आए हैं, और क्वीन का ये जो वीडियो देखा और उसने बताया कि वो एक यात्री की तरह है, यहाँ तक कि पुराने जमाने के कवि और दार्शनिक जो हैं वो भी इसी बारे में बात करते हैं कि हम सबके सब यात्री हैं, अदृश्य यात्री इस स्थूल वतन पर। हमने कल देखा कि हमको क्या ऊपर ले जा सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है। क्वीन भी इसी बारे में बात करती हैं, उन्होंने इसके बारे में हमको रिमाइंड कराया ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसको हम एक बिल्कुल साधारण कदम की तरह लेते हैं, जैसे कि हम 1 मिनट ध्यान का बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से स्वतंत्र रह सकते हैं। और ये कितना सुंदर है कि ये मेहमान चेतना, और यहाँ पर हम एक बात को हाईलाइट करना चाहेंगे, अंडरलाइन करना चाहेंगे इस मेहमान की यात्रा के बारे में, कि हमको मालूम है कि हमारा बाहर जाने का रास्ता क्या है, और यहाँ पर हम बंधनों के जाल में फंसे हुए हैं जो हमने खुद उत्पन्न किए हैं। और ऐसे में हम बाहर जाने के रास्ते की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जानते हुए कि यहाँ हमारा समय जो है वो अस्थाई है। यहाँ पर हम हर चीज को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं, और ये हमको किसी ना किसी चीज से, किसी सुंदर चीज से दूर कर देता है। और यहाँ की सच्चाई जो कि बहुत सुंदर है उससे हमको दूर कर देते हैं। हम जान गए हैं कि हम कुंडलिनी में स्पाइरल में नीचे की तरफ जा रहे हैं और इससे ऊपर आना है। कल की तरह हम कुछ क्षण अनुभव के, ध्यान के उत्पन्न करते हैं, बैठते हैं ध्यान में। और यहाँ पर अब हम एक मिनट का एकाग्रता से ध्यान के कुछ क्षण बनाते हैं, और ध्यान के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। हम हमेशा इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस समय हम कुछ क्षण के लिए आकाश का ध्यान करते हैं, आकाश का प्रतिबिंब, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, आकाश को देखते हैं। और जिस समय हम ये ध्यान कर रहे हैं, हम किसी और विचार को नहीं की तरफ नहीं जाएंगे। धन्यवाद। हम अपने आप को ये भी याद दिलाते हैं कि जैसे हम यहाँ पर मेहमान हैं या किसी के घर में हम मेहमान बनकर जाते हैं, और मेहमान किसी भी चीज को अपनाता नहीं है, वहां जाकर किसी चीज को अपना नहीं कहता है, वो किसी चीज को पकड़ के बैठना ही जाता है। इसी तरह से अदृश्य यात्री यहाँ पर एक मेहमान है इस स्थूल वतन पर, इस ग्रह पर, और उसके बाहर जाने का रास्ता भी निश्चित है। और उसके लिए हर क्षण एक तोहफे की तरह है, उसका हर अनुभव उसके लिए एक तोहफा है। वो किसी चीज को अपना नहीं कह सकता, उसके सिर्फ अनुभव ही उसके तोहफे हैं। उसकी बाहर जाने का रास्ता है, और वो जानता है कि इससे दूर, इससे पार उसका अपना संसार है, और यही यात्रा पर ये अदृश्य यात्री आता है। और हम इस सच्चाई को देख रहे हैं, अदृश्य यात्री इस स्थूल वतन का एक एटम भी उसका नहीं है, कुछ भी उसका अपना किसी चीज को बिलोंग नहीं करता है। और अगर वो उलझन में आ जाता है तो वो एक बच्चे की तरह की उलझन है, और जब उसको क्लैरिटी हो जाती है, उसको सब कुछ समझ आ जाता है, तो वो समझ जाता है कि वो तो एक केवल यात्री है यहाँ पर। हर क्षण उसके लिए एक नया है, धन्यवाद। अब हम अपने व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं, अपनी स्क्रीन पे देखिए। आज हम देखेंगे कि इस यात्री का क्या होता है जो कि यहाँ पर अदृश्य यात्री है, अदृश्य मेहमान है, और वह यहाँ वो क्या करता है यात्रा करते हुए। हम इसके लिए आध्यात्मिक मापचित्र को देखते हैं। इस पूरे मापचित्र को देखते हैं कि ये आध्यात्मिक मापचित्र हमें क्या दिखाता है कि ये जो स्थूल वतन है, जो कि एक ड्रामा है, जिस पर कि एक ड्रामा खेला जा रहा है, जो एक स्टेज की तरह है, ये एक स्टेज की तरह है, तो इसीलिए मैंने कर्टन बनाए हैं, पर्दे बनाए हैं। पूरा पूरा स्थूल वतन हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक स्टेज है और यहाँ पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ खेल दिखा रहा है। आपके लिए एक प्रश्न है, अगर ये एक स्टेज है और कर्टन्स भी हैं स्टेज पर, तो ये क्या है जो ग्रीन में प्रशांत भाई ने बनाया? किसी ने कहा एक्टर है, किसी ने परफॉर्मर है, एक और शब्द भी हो सकता है इसके लिए। किसी ने कहा आत्मा, किसी ने कहा एक्टर, कैरेक्टर या हीरो। बहुत अच्छे। अब इस सीन में आप देख रहे हैं एक यात्री जो कि एक एक्टर इस्तेमाल करता है। एक यात्री एक एक्टर की तरह इस स्टेज पर आता है। हमने ये शब्द यूज किया था, अदृश्य यात्री। एक्टर जो है वो अदृश्य है और उसने एक मास्क पहन रखा है, ये शरीर, ये चोला जो कि दिखाई देता है। और यहाँ पर इस स्टेज पर वो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीजों के साथ को इस्तेमाल करता है, मगर वो है एक अदृश्य अभिनेता, एक्टर। और इस आध्यात्मिक मापचित्र में वो जानता है कि उसका अपना एक संसार है इस स्थूल वतन से पार। और एक समय में ये एक्टर, ये अभिनेता वापस अपने घर जाता है। इस आध्यात्मिक मापचित्र में यहां पर एक गंतव्य स्थान भी है और सब आत्माओं को यहां पर जाना है। ये अदृश्य यात्री जितने भी हैं, सब आत्माएं हैं, उन सब को उस गंतव्य पर जाना है और ये उनका अपना संसार है। और ये स्थूल की दुनिया से पार का जो संसार है वो अविनाशी है। और यहाँ पर स्टेज पर जो भी छोटी छोटी कहानियां चलती हैं, उप एपिसोड्स चलते हैं, वो सब के सब खत्म होते हैं। एक शुरुआत भी है और खत्म भी होते हैं। और ये उनका घर नहीं है, उनका घर है इस स्थूल वतन से पार, जो कि कभी बदलता नहीं है, जहां समय की कोई सीमा नहीं है और ये बहुत सुरक्षित है। यहाँ पर आवाज नहीं है, ये आवाज के परे की दुनिया है, मगर स्टेज पर लगातार आवाज आती रहती है और ये कुदरती है। जैसे कि आप ड्रामा में अगर काम कर रहे हैं तो आप जानेंगे वहां पर लाउड स्पीकर्स होते हैं, माइक होता है, ढोल होते हैं, इस तरह तरह की आवाजें होती हैं, मगर जब आप घर में जाते हैं वहां कोई आवाज नहीं, वहां शांति है, संपूर्ण शांति। ये घर है संपूर्ण शांति का, संपूर्ण स्थिरता का, संपूर्णतः अविनाशी, ये वो घर है। जो चैतन्य है वो जानता है कि वो सुरक्षित है पूर्ण रूप से, और हर हर कोई यहाँ पर सुरक्षित है। मगर स्थूल में देखे तो यहाँ तो एक कहानी है, यहाँ पर हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और यहाँ कहानी चल रही है, और ये कहानी सच्चे संसार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। कहानी नुकसान से परे है, और ये हमारे सामने जो माप चित्र है एक बहुत अच्छा मॉडल है, जो हमको समझाता है कि इस अदृश्य यात्री का क्या होता है। जैसे जैसे ये लगातार यहाँ पर चलते चले जाते हैं यात्रा में, स्थूल वतन में इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर रहते रहते धीरे धीरे ये अदृश्य यात्री इस स्पाइरल में, इस कुंडलिनी में नीचे की तरफ को आता चला जाता है। यहाँ पर वो चाहता है कि कुछ मेरा अपना हो, एक बच्चे की तरह की इग्नोरेंस, अज्ञानता उसके अंदर आ जाती है, और एक समय पर ऐसा टाइम आता है कि वो इस हरी वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, अज्ञानता की रेखा, उससे नीचे आ जाता है। और ऐसे में जब आप अज्ञानता की रेखा से नीचे आ जाते हैं तो आप अपने सच्चे संसार से अलग हो जाते हैं, आप उसको पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। और ये थिएटर जो है यही आपका संसार बन जाता है, और इसमें आप स्पाइरल में नीचे और नीचे गिरते चले जाते हैं। और अभी भी इस समय भी हम सबके सब इसी स्पाइरल में नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। हमको बहुत कुछ चाहिए, हर चीज चाहिए, बस ये चाहिए चाहिए में हम नीचे जाते चले जा रहे हैं, हम इसमें फंसे हुए हैं बुरी तरह से। किसी को भी इस बारे में पता नहीं है, और वो ये भी नहीं जानते कि हम नहीं जानते हैं। और इस समय सबके सब इस समय उसी अंधकार में है, और पूरी तरह से अज्ञान है इस आध्यात्मिक मापचित्र से। हमारा उद्देश्य है, जैसे कि हमने कल देखा, कि वापस जाने का यात्रा भी है, अपनी वापस जाने की यात्रा के लिए। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं इस आध्यात्मिक मापचित्र में, तो बताएं। कल कल का एक क्वेश्चन है, क्या ब्रांचेस के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये कल के सेशन के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, पीपल, पोजीशन, पावर, इसके बारे में। क्या आप इसे आध्यात्मिक रूप में लेते हैं? जिनको कल की कहानी याद है कि एक इंसान जो है वो टहनियों को पकड़ के खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल हमारी कहानी की तरह है। हमने भी बहुत सारी टहनियों को, टालियों को पकड़ रखा है, और मगर ये है क्या? और यहाँ हम तरह तरह की चीजों से सहारा ले रहे हैं, किसी इंसान का, या किसी चीज का। और ये जो जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कार हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर अवचेतन मन में हम जानते हैं कि ये संसार अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि अगले ही क्षण क्या होगा। जैसे कि एक पॉट में बहुत सारा सोना रखा है तो आप उसको अपनी सपोर्ट मान लेते हैं, अपना सहारा मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी इससे चल जाएगी। मगर आप यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं इस असुरक्षित पॉट से। आपने बहुत असुरक्षित चीजों से अपनी सुरक्षा को के मायने बना लिए हैं। अब चैतन्य मन रूप से ये रखते हुए हम फिर भी पैनिक में रहते हैं, डर में रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें होती हैं। डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स के बारे में बता रहे हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ वॉर्स और फाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम सब इस तरह की जीवन जिए। मगर हमें जमीन पर रहना है, मतलब कि हमको अपनी जो सदा की सुरक्षा है उसको पहचानना है। उस डाउनवर्ड स्पाइरल में नीचे की तरफ को ना गिरे और वापस जाने की यात्रा में चले, तो यही हमको सुरक्षा देगी। यहाँ पर सब कुछ अस्थाई है, यहाँ पर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नहीं है। इस स्थूल वतन में ये जो टालियों की दुनिया है इसमें ही असुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर इस स्थूल वतन पर आप खेलने के लिए आते हैं, मगर धीरे धीरे आपका एटीट्यूड बदल जाता है। यहाँ पर जब आप आते हैं तब सिर्फ खेलने के लिए आते हैं। जो कुछ भी है यहाँ पर, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशन है या नहीं करते हैं, हर चीज आपको फन लगती है। और जब आप खेल रहे होते हैं तो आप पाते हैं कि आप बहुत अच्छे से इस खेल को खेल रहे हैं। किसी ने कहा कि ये गेस्ट का, मेहमान का जो कॉन्सेप्ट, संभावना आपने दी, वो उससे एग्री करते हैं, मगर उनको फिर भी आश्चर्य होता है कि किसी भी सिचुएशन में सही व्यवहार क्या होगा, जहां पर कि यात्री का या मेहमान का संभावना हम नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे में हम अपने रोल को किसी भी सिचुएशन में कैसे देखते हैं? जैसे कि प्रशांत भाई कह रहे हैं कि हर क्षण में हमको ये कोशिश करनी है कि हम इस स्पाइरल में ऊपर की तरफ आए। ये एटीट्यूड जो व्यवहार है मेहमान का, यात्री का, यही हमारे लिए सही है कि हम इसको लेकर अपने आप को इस स्पाइरल में ऊपर की तरफ लाएं। यहाँ हमने एक शब्द यूज किया, एक्टर, अभिनेता। हम सब के सब हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और यही सब शब्द जो हैं हमको स्पाइरल में ऊपर की तरफ लाने में हेल्प करते हैं और यही हमको उस उच्चतम चेतना में के नजदीक लाने में हेल्प करते हैं और ये हमको सुरक्षा देता है। जब हम सिक्योर होते हैं, सुरक्षित होते हैं, तब हम जानते हैं कि आपको सही से मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्लैरिटी में हैं, आप महान हैं, नोबल हैं, आपके पास आप भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, और ये आपको प्रेम में ले जाता है, आप प्रेम में ही बन जाते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आप घर पे हो या किसी परिस्थिति में हो, हर समय ये बातें आपको सुरक्षा देती हैं। मगर इस समय हम न्यूनतम चेतना में हैं, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। और ऐसे में ना अपनी मदद कर सकते हैं ना किसी और की मदद कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्टिंग चल रही है, आप इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं। मतलब ये कि जो भी कोई परिस्थिति है उसमें अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है, जो आपको की सुरक्षा दे। कल एक प्रश्न था कंपैशन के ऊपर आधारित, कि कभी थकान आ जाती है एक ही तरह का कंपैशन का बिहेवियर करते हुए, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपैशन जो है उस अदृश्य यात्री की यात्रा का हिस्सा है, मगर यहाँ हम इसको कैसे हैंडल करें ये आप बताएं। कल हमने बात करी थी कि हम एक्सप्लोर करें, हम जानने की कोशिश करें कि ये उच्चतम चेतना में जाना कैसा है, कैसे होगा। तो उसी के लिए ये वन मिनट के जो आपको हमने ध्यान बनाने के बताया, तो वही हमको ये जो पूरा संसार इस समय स्पाइरल में नीचे आ गया है, उन सबको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए ये 1 मिनट के जो क्षण बनाते हैं वही हेल्प करते हैं। और हम अब हम जानते हैं कि हमारे पास तरीके हैं, हम जानते हैं कि कैसे हम इस स्पाइरल में अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं न्यूनतम चेतना में और मुझे कहा जाता है कि मैं कंपैशन रखूं, मगर और बहुत सी बातें हैं जो मेरे आसपास चल रही हैं, और जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मेरे को डिजायर्स है, एक्सपेक्टेशन है, कहीं कंपटीशन है, ये सब बातें मुझे इस कंपैशन में आने नहीं देती। तो मुझे न्यूनतम चेतना से इसके लिए नहीं करना है, मुझे ये सब करना है उच्चतम चेतना में रहते हुए। जब हम न्यूनतम चेतना से ये सब करते हैं, तभी हमको कंपैशन से फटीग यानी कि थकान महसूस होने लगती है। जब आप उच्चतम चेतना के साथ होते हैं, तब ये ऊपर की तरफ स्पाइरल में आने में आपकी हेल्प करती है। और जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं वो सब नेचर में है, नूंद है, कुदरती है ये सब। और हर अदृश्य यात्री के अंदर अपने गुणों और शक्तियां हैं, वो उसके अंदर नूंद है। और जब आप अपने ऊपर अपने आप को स्पाइरल में ऊपर यानी उच्चतम चेतना की तरफ ले जाते हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही संपूर्ण हैं। अब इस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं जो कि हमारे सामने है इस व्हाइट बोर्ड पे, इस आध्यात्मिक मापचित्र में, इस बड़े मापचित्र में। हम देखते हैं कि इस स्पाइरल में ऊपर जाते हुए अदृश्य यात्री सुरक्षित है, मगर वो क्यों सुरक्षित है? वो जानता है कि वो सत्य है, आसपास भी सब सत्य हैं। वो उस आयाम में है जहां की उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंच सकता। वो जानता है कि यहाँ इस संसार में कोई भी चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ये बात उसको बहुत ज्यादा सुख देती है। और जैसे ही हम ये ध्यान के क्षण बनाते हैं, तो ये सच में सच्चाई बनती चली जाती है, और हम जानते हैं कि हम सदा सुरक्षित हैं, अविनाशी हैं। आध्यात्मिक भाषा में हम एक शब्द यूज करते हैं, पारस, जो कि संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है श्रेष्ठ, और दूसरा शब्द है पत्थर। और ये पारस हमको, श्रेष्ठ हमको मदद करता है देखने में ये बड़े मापचित्र को। पारस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं बुद्धि के लिए, इंटेलेक्ट के लिए, पारस बुद्धि। पारस हमको मदद करता है वो हमको सूक्ष्म देखने में सहायता करता है, और वो पूरे के पूरे मापचित्र को देखने में मदद करता है। और पारस में आ जाता है सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धि और विशाल बुद्धि। और पारस के ऑपोजिट है पत्थर बुद्धि। पत्थर मीन्स आप जैसे जानते ही हैं कि ग्रॉस, घोर, घोर न्यूनतम बुद्धि। और जब पत्थर बुद्धि होते हैं तो हम स्थूल वतन के बाहर, बाद की, बाहर की कोई भी चीज हम देख नहीं पाते हैं। हम बहुत ही घोर रूप से नीचे गिर गए हैं और ऊपर का कुछ भी देख नहीं पाते। हम इस स्थूल वतन के बियॉन्ड, इसके पार क्या है उसको नहीं देख पाते हैं। जब हम यहाँ पर पारस का इस्तेमाल करते हैं, हम वो सब देखते हैं जो सत्य है, और पूरे के पूरे मापचित्र को देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एलिफेंट है, हाथी है। एक अंधा इंसान देखने की कोशिश करता है हाथी को, तो वो उसकी पूंछ को छूता है, तो वो पूंछ को छूता है तो उसको कोई कहता है ये हाथी है, तो वो हाथी को एक पूंछ की तरह देखता है। उनको उसको मालूम है कि हाथी की टेल होती है, पूंछ होती है, मगर क्योंकि वो देख नहीं पाता कि ये पूरा हाथी है, हाथी जंगल में है, ये सब बातें नहीं समझ पाता। मगर पारस पूरे के पूरे मापचित्र को देख सकता है। वो पूरे के पूरे हाथी, हाथी के हाथी कहाँ है, जंगल में है, और जंगल में और क्या है, वो सब देख पाता है। मतलब बड़े मापचित्र को पूर्ण रूप से देख पाता है। और पारस जानता है कि यहाँ सबके सब अविनाशी हैं, सबके सब सुरक्षित हैं, और उनके पास अपना एक संसार है, और उनके लिए ये स्थूल वतन एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है, एक तोहफा है, जहां पर कि वो खेल खेलने के लिए आते हैं। वो हर चीज को एक पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से देखता है। और जैसे जैसे हम स्पाइरल में नीचे आते चले जाते हैं, तो हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बनती जाती है, और पत्थर बुद्धि स्थूल वतन की सिर्फ कहानी को देखती है। और वो सिर्फ खाली पारस जो है वो सिर्फ टेल को नहीं देख रहा, पूंछ को नहीं देख रहा, वो जानता है कि टेल हाथी की है और हाथी भी है आगे। पत्थर जो है, बुद्धि जो है, वो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, वो नहीं जानता कि वो पत्थर बुद्धि है। अब आपसे मैं पूछूं कि इस वर्तमान दुनिया में हम कहाँ हैं, पत्थर बुद्धि के स्तर पर हैं या पारस बुद्धि के स्तर पर हैं? आप जवाब लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। किसी ने कहा कि पत्थर बुद्धि है, तो प्रशांत भाई कह रहे हैं जब हम पत्थर संसार में हैं तो यहाँ के जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो साइंस है, चाहे मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग सिस्टम, किसी भी तरह के जो सिस्टम है, वो सब के सब पत्थर बुद्धि पर कार्य करते हैं और वो सबके सब सीमित हैं। और वो अपनी सब सिस्टम्स को सच्चाई बताते हैं कि ये ही सच है, वो उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मगर और हमारे रिलेशंस में भी, हमारे जितने भी संबंध है, रिलेशंस है, वो सबके सब पत्थर बुद्धि से बनाए हुए हैं, तो सबके सब पत्थर हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट्स आते हैं, धर्म संस्थापक आते हैं, वो सबके सब वो अच्छी बातें बताते हैं, मगर पत्थर बुद्धि जो है उसको गलत तरह से लेके और ही उसको उलझन में डाल देते हैं, उलझा देते हैं, और सबके सब पत्थर बुद्धि से नीचे गिरते चले जाते हैं। आप कुछ समय के लिए ध्यान में बैठते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि पारस क्या है और पारस बुद्धि से कैसे काम करना है। मगर फिर सारा दिन आप फिर वही उसी पत्थर बुद्धि में आ जाते हैं और इस कहानी को ही सच मानने लगते हैं जो स्थूल वतन पे चल रही है, और आप इसी को सच मानने लगते हैं, और आपके जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो पत्थर बुद्धि पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर बुद्धि जो है बहुत डोमिनेंट है और पारस जो है वो नीचे दबा हुआ है। मगर यहाँ बहुत अच्छी बात आपको सुनने को मिलेगी कि पारस बुद्धि सबके पास है, हमारे पास ये ऑप्शन है, विकल्प है कि हम अपनी पारस को, अपने पारस को मजबूत बना सकें। जैसे हमारे अलग अलग मसल्स होते हैं, पैर के मसल्स, टांग के मसल्स, हाथ के मसल्स, जिसको जितना इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही मजबूत होता चला जाता है, और जब आप किसी मसल को इस्तेमाल नहीं करते तो वो कमजोर होता चला जाता है और अल्टीमेटली खत्म हो जाता है। और यहाँ पर भी से बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, जब आप पारस को हमने इस्तेमाल नहीं किया तो वो बिल्कुल खत्म हो गया और पत्थर बुद्धि स्ट्रांग हो गई। मगर इस समय हमारे पास समय है, विकल्प है, एक एक मिनट की ये ध्यान बनाकर कि हम अपने पारस को बहुत अच्छा खाना भोजन दे और उसको मजबूत बनाए। ये छोटे छोटे अनुभव हो सकते हैं एक एक मिनट के, मगर वही आपको अल्टीमेटली बड़े आध्यात्मिक मापचित्र को देखने में हेल्प करेंगे और वही आपके पारस को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। और अब हमें पारस को स्ट्रॉन्ग करना ही है इस जन्म में, इस वर्तमान समय में। और यहाँ पर आप बहुत सेंसिबल हैं और अपने पारस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और यहाँ आप किसी एक ऐसी चीज से जुड़े हैं जो कि बहुत ही कीमती है, हर सबके हर किसी के सामने ये खजाना रखा है, ये ट्रेजर रखा है, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप पारस को मजबूत कर सकें। और जब आपके पास पारस होता है तो मेडिटेशन बहुत आसान हो जाती है। हम फिर से इस बारे में बात करेंगे। कई लोग पूछते हैं ये पारस क्या है, हम इस पर फिर से बात करेंगे। कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें तो बताएं। बिलिंडा बहन ने कल एक वर्ड यूज किया था, प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग वर्ड यूज किया था, तो और इसको एक चैलेंज की तरह लेना है, पत्थर वर्ल्ड से बाहर निकल के हमको पारस में आना है। ये एक अच्छी नई शुरुआत है। और इस चैलेंज से बाहर आने के लिए हमको मजबूती से काम लेना होगा। हर कोई कोशिश कर रहा है इससे बाहर आने के लिए, इस पत्थर बुद्धि से बाहर आने के लिए। और जैसे जैसे आप एक एक मिनट के अनुभव करते हैं, यही आपको मजबूत करता है और आपको आपके अनुभव को बढ़ाता है कि आपका पारस मजबूत हो। और ये खाली आपको ज्ञान से नहीं होगा, ये आपको अपने स्वयं के अनुभव बनाने होंगे। प्रशांत भाई ये कहानी सुना रहे हैं। इस कहानी में एक ईगल बर्ड है, एक फॉर्म पर आता है और वहां नीचे एक सुअर की पीठ पर एक इंसेक्ट, एक कीड़ा बैठा हुआ है। और ईगल उसको बोलता है, क्या तुम आकाश में आना चाहते हो? मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, घाटी दिखाऊंगा, पहाड़, बहुत सारे जानवर, पक्षी, वृक्ष, बहुत सारे पेड़ पौधे, ये पूरा का पूरा आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा, आप आना चाहते हो? वो जो इंसेक्ट पीठ पे बैठा हुआ है वो कहता, हाँ बस मैं आना तो चाहूंगा, मगर मुझे एक बहुत नई सी जमीन मिल गई है, मैं वहां बैठा हूं उस जमीन पर, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, ये बहुत एक्साइटिंग है, मैं यहां पर अपने आसपास एक फेंस बना रहा हूं, फिर कभी आना फिर मैं चलूंगा आपके साथ। एक हफ्ते के बाद ईगल फिर से दोबारा से आती है तो वो इंसेक्ट बोलता है कि मेरे को और लैंड मिल गई है, मेरे को बहुत सारी लैंड मिल गई है, तो मैं अभी नहीं जाना चाहता, आप फिर आना। और ईगल को एक हफ्ते के बाद आने के लिए कहता है और ईगल फिर से एक हफ्ते बाद आती है। तो उस समय वो कहता है, इस इंसेक्ट कहता है कि मेरे ये जो जमीन है इसमें क्रैक्स आ गए हैं, मुझे कुछ सहायता भी चाहिए कि ये क्रैक्स कैसे मैं रोक सकता हूं। और ये सब हमारी ही तो कहानी है, अगर आप ध्यान से सोचें हम सबकी ये कहानी है। तो अभी क्या करेगा इंसेक्ट? क्या वो क्रैक्स को फिक्स करेगा तब जाएगा, या और जमीन ले तब जाएगा? आप क्या कहते हैं, क्या होगा? किसी ने कहा कि इसको छोड़ के वो ईगल के साथ चला जाना चाहिए उसको। एक बार ये कहानी प्रशांत भाई ने कहीं और किसी स्टूडेंट को सुनाई तो वो ये कह रहे थे कि मैं पीएचडी कर रही हूं, कि मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट करूं तब मैं जाऊं अध्यात्म की ओर, या यही रहूं। किसी ने टाइप किया है, जाऊं वापस आऊं और फिर क्रैक फिक्स कर लूं। किसी ने कहा कि ईगल से क्रैक्स को फिक्स करने के तरीके सीख के वापस आ जाए। यहां पर विकल्प ये है, ईगल बन के आप आकाश के आयाम को देखें, या वो लैंड या मड उसमें ही फंसे रहे। और जब आप एक बार इस ऑप्शन को जो आकाश के आयाम का है उसको देखते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उसी में रहें, मगर वो पीएचडी वाले स्टूडेंट की बात के लिए कि उसको चाहिए कि वो अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करे। क्या चाहते हैं आप कि इस इंसेक्ट की लाइफ ईगल के साथ जाएं या फिर वापस आएं, या ईगल की लाइफ कैसा आप कैसी लाइफ आप चाहेंगे? और वो एक सेकंड में अगर आप आपको डिसाइड करना, हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास दोनों विकल्प हैं और हमको एक सेकंड में डिसाइड करना है, तो ऐसे में अपने पारस को इस्तेमाल करके सही ऑप्शन की तरफ जाना है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं इटर्निटी, अविनाशी आयाम की। जैसे जैसे हम पारस का इस्तेमाल करते हैं, पारस मजबूत होता जाता है, हमारे अनुभव जो है वो दिव्य होते चले जाते हैं। शुरू में ये आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह लगे, एक संभावना लगे, मगर बाद में एक एक मिनट के अगर आप ध्यान के क्षण बनाते रहते हैं तो ये कंसेप्ट नहीं रह जाता, ये आपके अनुभव बनते चले जाते हैं। आध्यात्मिक भाषा में लिखा है कि आप आकाश को तो जीतते ही हैं, आप जमीन को, जल सॉरी थल और आकाश दोनों को जीतते हैं। आप इस समय इस पूरे के पूरे स्थूल वतन को जानते हैं, जान रहे हैं। यहाँ कहानियों को चलते देखकर आप कहानी को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, इंजॉय करते हैं, मगर आप जानते हैं उस आकाश के आयाम को भी। मगर पत्थर बुद्धि सिर्फ अपने स्थूल वतन को, इस कहानी को ही जानता है और इसी को अपना सच्चा घर समझ रहा है। और यहाँ पर वो जानता है कि वो असुरक्षित भी है और इंजॉय भी नहीं कर पाता। और तब जब हम जानते हैं हम असुरक्षित हैं तो हम बिल्कुल खो जाते हैं। तो ये पत्थर बुद्धि की का व्यवहार है इस स्थूल वतन पर। जैसे जैसे एक मिनट के ध्यान के क्षण आप बनाते चले जाते हैं तो आप पूरे के पूरे आध्यात्मिक मापचित्र को समझने लगते हैं, धीरे 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 पूरा मापचित्र समझ जाते हैं और उसको एक नए तरीके से देखते हैं, इस पूरे के पूरे स्थूल वतन को एक नई निगाह से देखते हैं और जानते हैं कि ये कहानी है, ये ड्रामा है, चल रहा है इस स्टेज पर और ये एक फन गेम है। और जब आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं इस थिएटर पर एक ड्रामा चल रहा है और यहाँ पर आप एक प्रिंस, एक राजकुमार का रोल खेल रहे।
हम जोकर वगैरह का पार्ट अप्रिशिएट करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि ये एक थिएटर है। आप एक अलग रीति से उसे देखते हैं, अलग दृष्टिकोण से। आपको कुछ ऐड करना है, कहना है? किसी ने कहा कि अगर आप अहंकार के द्वारा देखते हैं तो आप क्रैक्स को देखेंगे। क्रैक्स अभी भी होगी परंतु आप उसको अलग रीति से हैंडल करेंगे। तो कभी क्रैक्स भी नेसेसरी होती है। क्यों हम पारस के बारे में भूल जाते हैं जब हम पारस के द्वारा साथ ही जन्मे हुए हैं? तो हमने उसको लंबे समय में खोया है, पारस को। जो अभी का कल्चर है वो पत्थर का है, पत्थर बुद्धि का है, और हम उससे प्रभावित हुए हैं। एक जो पॉइंट है, फैक्टर है, जो महत्व का है, वो है हर्ड मेंटालिटी। हम प्रोग्राम क्रिए हमारे में प्रोग्राम बन गया है कि जो क्राउड होता है वो कभी गलत नहीं होता। जैसे कि अगर कोई एक शिप है, वो डायरेक्शन बदलती है, तो पूरा संगठन शिप का डायरेक्शन बदल देता है। तो अभी इस दुनिया में व्यक्ति इस हर्ड को, संगठन को, क्राउड को ज्वाइन कर लेता है, सही, इजीली, सरल रीति से, सहज रीति से। आप क्या कहेंगे कि पत्थर सर्वाइवल के लिए क्रिएट किया हुआ है? नो, नहीं। पत्थर जो है वो है जैसे कि एक एबनॉर्मल स्थिति है, असामान्य स्थिति है। जैसे कि कोई हैंडीकैप है तो वो सर्वाइवल के लिए नहीं है, परंतु वो एबनॉर्मल है। इसी तरह से पत्थर जो है वो एक एबनॉर्मल स्थिति है, असामान्य स्थिति है, और वो कोई हेतु सर्व नहीं करता है, उसका कोई हेतु नहीं रहता है। और जैसे कि पत्थर माना अज्ञान, इग्नोरेंस। एक क्वेश्चन, प्रश्न था और कमेंट थी पहले। कमेंट यह थी कि सबसे पहले डिटैचमेंट अर्थात साक्षी को समझना बहुत जरूरी है, उससे पहले कि हम रोल प्ले करें। तो आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, हमने हम एक फ्रीडम अर्थात मुक्ति का शब्द यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो एक बंधन उत्पन्न किया हुआ है। जैसे कि कल देखा कि कैसे हम बंधन उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हम रोप अर्थात रस्सी के साथ बंध जाते हैं बाहर की चीजों की वजह से। तो हम हमारी बंधन खुद उत्पन्न करते हैं और हमें इस बंधन से फ्री होना है। कोई भी पक्षी है जो रस्सी से बंधा हुआ है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे ही रस्सी से मुक्त होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो कुछ एक प्रश्न है, हम क्यों भूल जाते हैं? अगर हम कंप्लीट है, फुल है, पावरफुल है, तो क्या वो एक खेल का भाग है? हमने देखा कि कैसे हम चीजों में फंस जाते हैं, समय प्रति समय। बंधन अपने आप सडनली नहीं आता है। जैसे कि हमने कहा था कि कोई आपको कहेगा कि समाज कहता है आप, ये सब आपका है। जैसे कि यहां एक बॉक्स दिखाया है, ये एक पॉट है, और कोई आपको कहता है ये आपका है, और आपको सभी आपको कहते हैं कि यह आपका है, मतलब हम ये मानते हैं कि ये हमारा है, तो वो लेबल के साथ आता है माय मेरा, तो है टेम्पररी अस्थाई, लेकिन मेरा शब्द लग जाता है। तो कुछ एक समय पहले आपको स्मृति थी कि आप मेहमान हैं, परंतु साथ साथ आपने इस अस्थाई दुनिया में, भौतिक दुनिया में टेम्पररी जो है उसके ऊपर आपने मेरा लेबल लगाया, तो हो सकता है वो बच्चे हैं, शरीर है जिसको हम मेरा कहते हैं, अलग अलग कारण है। किसी ने कहा कि मुझे अगर ये मेरा नहीं है तो ये किसका है, तो हम फील करते हैं कि किसी को वो बिलोंग करता है, तो मेरा नहीं है तो किसका है, ऐसा किसी ने पूछा, तो मेरा शब्द आता है। जैसे ही मेरा शब्द आता है टेम्पररी चीजों के लिए, तो हम गिरधि कला में जाते हैं, वो सिर्फ मेरेपन में नहीं रहता है, हमें फिर और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, तो हम फिर हमारी स्थिति को खोते जाते हैं, गिरती कला में जाती है स्थिति। तो ये हर एक व्यक्ति के साथ इस प्लेनेट पर हो रहा है, सभी ये गिरती कला में जा रहे हैं अलग अलग चीजों की वजह से। जैसे ड्रग है तो हम एडिक्शन कहते हैं, अगर ज्यादा गोल्ड चाहिए तो हम कहते हैं कि ग्रीड, परंतु सब सब इसी स्पाइरल में, डाउनवर्ड स्पाइरल गिरती कला में जा रहे हैं। तो पूरा जो क्राउड है, हर्ड है, वो इस दिशा में जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये था, आशा है कि ये आपको मदद मिली। तो ये ट्रैवलिंग माना यात्रा का सार क्या है? जब हम आते हैं और जाते हैं, वापस पत्थर में आते हैं, तो हमें ट्रैवल करने की जरूरत क्या है? हम तुरंत एक बात को हम समझेंगे कि हमारी प्रायोरिटी है पत्थर से बाहर आना, और जैसे कि अभी एक आवश्यकता है हमारी प्लेट में, उसके बाद हम अच्छी तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और हमें और स्पष्ट जवाब मिलेगा, हम खुद ही समझ पाएंगे इस गहरे राज को। तो अभी हम जिस तरह से है और जो यूनिवर्स है वो बहुत पॉजिटिव है, हमें ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो ड्रामा माना एक भौतिक दुनिया में एक गिफ्ट मिली है, ऐसे समझना है। लेकिन ये जो हमारा दृष्टिकोण है, हम उसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं पत्थर के द्वारा। तो जो पूरा यूनिवर्स है वो पॉजिटिव है, जैसे कि आप बच्चे को एक खिलौना देते हैं खेलने के लिए, परंतु अगर बच्चा कंफ्यूज है तो जो खिलौना है वो उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। अगर कोई दूसरे बच्चे उसके खिलौने को टच करेंगे तो वो जैसे रोता है, क्योंकि वो कंफ्यूज है। उसी तरह से जब हम पत्थर बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो जो चीज बहुत सुंदर है उसे हम मुश्किल अथवा प्रॉब्लम समझते हैं जब हम पत्थर में होते हैं। तो हमें ये बीज को प्लांट करना है जो पॉजिटिव यूनिवर्स के बारे में बात की। तो सो अगर हम कुछ बदलने के लिए कर नहीं सकते, तो फिर क्या हम सरेंडर कर रहे हैं भगवान को? तो ये जैसे कि एक ओरिएंटेशन है, जैसे कि मैं यहां से दूसरे शहर में जाता हूं, मैं अगर मैप देख के जाता हूं तो हम जैसे बुद्धिमान है, हम उस जगह पर सरलता से पहुंचेंगे। अगर हम मैप को नहीं देखेंगे तो उस जगह पर पहुंचने का हमें जैसे मुश्किल लगेगा। जब आप बड़ा मैप देखते हैं तो आप समझते हैं कि ये सारी भौतिक दुनिया किसके लिए है, किस हेतु के लिए है। नहीं तो ये जैसे कि इंसेक्ट जैसा है कि उसे पता नहीं है कि पिग पिग है। तो ईगल कैसे दुनिया को देखता है, इंसेक्ट कैसे दुनिया को देखता है, वो हमें समझना है। तो हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव देखना है। पारस इस बात को अच्छी तरह से समझता है, तो उसे पता है कि पिग किसके लिए है, और उसे ये भी पता है कि स्काई किसके लिए है, आकाश किसके लिए है। तो ये उसका महत्व का भाग है, परंतु ये जो सारी चीजें हैं वो उसे चढ़ती कला में जाने के लिए मदद करती है, अपवर्ड स्पाइरल। तो अभी हमें ये निचली स्थिति से ऊंची स्थिति में जाना है। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम थोड़ा समय अभ्यास के लिए निकालेंगे। तो अभी अगले कुछ समय में मैं कुछ एक शब्द बताऊंगा, बोलूंगा, चार स्टेप्स। तो ये जो है चार स्टेप्स, वो 4 मिनट के अंदर आप कर पाएंगे, ये आपका होमवर्क भी होगा। सबसे पहले स्टेप 0, सबसे पहले अपना पोस्चर चेक करना है। जहां पर भी हम बैठे हैं, हम एक अच्छा वातावरण क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि कोई आवाज नहीं है। हम एक अच्छा वातावरण क्रिएट करेंगे, जैसे कि एक कंफर्टेबल शरीर का पोस्चर। पहला स्टेप, हम सिर्फ देखते हैं एक अदृश्य यात्री को मन की आंखों से, जैसे कि व्यक्ति एक टूरिस्ट को देखता है उसके शहर में जो आता है। तो टूरिस्ट को पता होता है कि वो इस शहर से नहीं है, वो इस शहर को विजिट कर रहा है। उसे ये भी पता है कि वो टूरिस्ट है और वो एक दूसरे शहर से बिलोंग करता है, और वो इस शहर में थोड़े समय के लिए रह रहा है। तो ये बहुत स्पष्ट होता है टूरिस्ट को। तो उसी तरह से हम अदृश्य यात्री को, ट्रेवलर को, एक छोटे से सितारे के स्वरूप में देखते हैं। तो ये जो छोटा सितारा है वो कहीं और से आया है और उसे पता है कि वो यहां सिर्फ विजिट कर रहा है, और उसका एग्जिट माना वापस जाना तय है, निश्चित है। ये अदृश्य यात्री, स्टेप 2 में अदृश्य यात्री अब इस दृष्टिकोण को देख रहा है। अभी यह अदृश्य यात्री, उसे पता है कि उसका वापस जाना गारंटेड है, निश्चित है, इसीलिए उसका कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा भाव नहीं है कि उसे यहां पर कुछ क्लेम करना है, उसका वह हेतु नहीं है, वो यहां पर फंसना नहीं चाहता है। वो बहुत ही स्पष्ट है उसकी एग्जिट के बारे में, गारंटेड एग्जिट, निश्चित जाना है उसे। उसे पता है कि वो उसका जो उसकी जो दुनिया है वो यहां से परे है। तो उसकी वजह से वो हर पल उसका जो यहां समय है वो उसके लिए सौगात है। वो पूरी यात्रा को अप्रिशिएट करता है, महिमा करता है और उसके अनुभव को, क्योंकि वो टूरिस्ट है, इनविजिबल टूरिस्ट है। और उसका जो अनुभव है वो बहुत ही एक विविधतापूर्ण एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो वो ये जो अलग अलग अनुभव उसे होते हैं उससे वो अम्यूज होता है, आश्चर्यचकित होता है और उसे पता है कि इस भौतिक दुनिया में से उसे कुछ ले नहीं जाना है। अदृश्य यात्री ऑब्जर्व करता है, देखता है इस दुनिया को। अब स्टेप थ्री में इस यह अदृश्य यात्री छोटा सितारा वो मेहमान है, परंतु उसे महसूस होता है कि वो जो मेहमान है वो एक कहानी की दुनिया में है। तो वो कहानी को देख रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स इस वार्ता में, कहानी में, और कोई भी अगर कहानी में एक्टिंग कर रहा है तो वो अहंकार उत्पन्न नहीं करता। कोई भी कहानी के बारे में कंप्लेन नहीं करता और चिंता नहीं करता कहानी के बारे में। अदृश्य यात्री जो है वो उसके लिए बहुत अम्यूजिंग है, आनंददायक है सारी ये मोमेंट्स। स्टेप फोर, चौथा स्टेप, अदृश्य यात्री कहानी से परे जाता है। अब और कहानी से परे, इस दुनिया से परे एक शांति की दुनिया है, उसको वो शांति मिलती है। वहां पर इस कहानी का कोई आवाज नहीं है, और ये जो यात्री है उसे कहानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो दुनिया है वो एक संपूर्ण एकांत की है, शांति की है। हम इस बात को एक आकाश के स्वरूप में देखते हैं जो स्थूल आकाश से भी परे है। और वहां पर प्रकाश का विस्तार है और वो अनंत है, टाइमलेस है, समय से परे है और सदा के लिए उसका अस्तित्व होता है, इटर्नल है। और ये जो अदृश्य यात्री है वो यहां बिलोंग करता है, ये उसकी दुनिया है। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं हमारी आगे की यात्रा में, इस सुंदर सत्य को जो अदृश्य यात्री का है उसको याद रखते हैं स्मृति में। शुक्रिया। मैं खुश होऊंगा अगर आपको कोई विचार शेयर करना है, कोई प्रश्न है, और कुछ 1 मिनट के बाद हम रूम्स बनाएंगे, ब्रेकआउट रूम्स, छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो ये एक स्पष्ट हो रहा है और जैसे एक एम्पावरमेंट मिल रहा है, शक्ति मिल रही है कि सारे की सारी बातें अगर पारस के द्वारा हम देखते हैं तो वो जैसे कि हम एक बिल्कुल अलग रीति से, अलग दृष्टिकोण से हर बात को, हर परिस्थिति को अप्रोच करते हैं। हम बहुत ही इन्वॉल्व है, परंतु एट द सेम टाइम जैसे कि अदृश्य यात्री है, वो यह विजिट कर रहा है। और तो उसे याद है कि स्मृति आती है कि मैं अदृश्य हूँ, अदृश्य बीइंग हूँ। तो यहाँ पर इस भावनाओं को मैं महसूस कर रही थी। तो चैट में वो जो 4 स्टेप्स बताए हैं वो शेयर किए हैं, और जो रिकॉर्डिंग की लिंक है वहां पर भी आपको उसका पीडीएफ मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा 4 स्टेप का। तो हाँ, तो ये जो ब्रेक के बाद स्केचेस चले जाएंगे, तो आप ये जो रिकॉर्ड, स्केच का रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको लाभ होगा। और मुझे याद है डॉटेड ग्रीन लाइन, अगर इस प्रकार का चित्र आप रखते हैं आपके सामने, तो वो जैसे कि एक पारस के लिए वातावरण मिलता है, उसको पालना मिलती है। तो कुछ एक शब्द जो है वो इसमें महत्व के हैं, जैसे कि अनंतता, समय की अनंतता, टाइमलेस, सुरक्षा, इटर्नल, अनंत। तो वो जैसे कि हमारे अंदर जाना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक रिमाइंडर है हमारे लिए। तो जैसे कि आप जो हर्ड है वो एक दिशा में जा रही है और आप एक अलग दिशा में जा रहे हैं अपने इटर्नल वर्ल्ड की ओर। तो टाइड के जो प्रवाह है उससे आप अलग जा रहे हैं। तो हमें ये 1 मिनट का फुल प्रोग्राम बनाना है कि ये बातें हम रिवाइज करें, पारस का अनुभव करें। तो अभी हम रूम्स में जाने के लिए तैयार हैं। तो चर्चा के लिए प्रश्न है कि तो पारस का बड़ा मैं अर्थात आपके लिए क्या है? तो ये प्रश्न रखे हैं कि ड्रामा से परे का एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, और पारस और पत्थर अर्थात क्या? अगर आप अलग भाषा के रूम में चले जाते हैं तो आप रूम को चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिखेगा। विकल्प का हार्दिक स्वागत है, आशा है कि आप सबने एंजॉय किया और आप सभी एक दूसरे को मिले। तो अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और रिफ्लेक्शन करेंगे, एक बड़ा मैप देखेंगे। तो हम 1 मिनट में वापस ज्वाइन करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया। तो जैसे कि एक ये बहुत ही मददफुल स्टेप्स, मददफुल मदद हमें कर रहे थे ये जो स्टेप्स थे मेडिटेशन के। तो मैं अभी बिलिंदा बहन को आमंत्रित करती हूँ जो कल हमें मिले थे, तो हम आज फिर से उनसे सुनेंगे। तो आपके रूम में क्या डिस्कस हुआ आप बता सकते हैं? आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया सहरा। हेलो सभी को। हाँ, आपने कहा कि ये जो स्टेप्स, तो ये बहुत ही जैसे मदद करता है। रूम में बहुत सारी चर्चा हुई मेडिटेशन के बारे में, और वो हो सकता है कि शुरुआत में कंफ्यूजन भी हो, परंतु जब हमारे पास ऐसे सिंपल स्टेप्स है तो वो हमें एकाग्र करने में मदद, एकाग्र होने में मदद करेगा। और तो अगर आपको एक डायरेक्शन में जाना है, दिशा में जाना है, तो वो आपको मदद करता है ऐसे स्टेप्स। तो जैसे कि ये जो ईगल की कहानी थी, इंसेक्ट, तो मैं सोच रही हूं कि अलग अलग रीति से ईगल जो है वो एक अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ज्ञान। तो ज्ञान एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है, क्योंकि नॉर्मली हम कभी कभी असंतुष्ट रहते हैं जीवन से, जीवन के साथ, उसकी लिमिटेशन के साथ। और एक सेंस है, समझ है कि कुछ और चाहिए जो हमारे पास है उससे। तो भौतिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर हमें ये संकल्प होते हैं, असंतुष्टता होती है। तो हम क्या करता है, हम क्या करते हैं इस ज्ञान से कि कैसे इंसेक्ट जो है उसको स्टोरी में सब कुछ महत्व का लगता है। और मुझे लगता है कि हम हर एक इससे संबंधित रिलेट करते हैं, और हमारा खुद का आध्यात्मिक जो ग्रोथ है वो हम इससे रिलेट करते हैं। जब हमारे पास ज्ञान मिलता है, जब हमें ज्ञान मिलता है, तो जैसे कि एक बार हम कहेंगे कि हाँ चलो हम करते हैं अभ्यास, तो अगर एक बार हम अनुभव करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें वापस इंसेक्ट कॉन्शियसनेस में आने का मन नहीं होगा। तो इस ज्ञान को उपयोग करना और हिम्मत रखना, सिर्फ कहना कि हाँ मुझे देखना है कि आकाश से परे ये दुनिया कैसे देखती है। तो ये बहुत ही एक एनकरेजिंग था जो कहानी के संदर्भ में हमने देखा। और सिर्फ जानना कि हमारे पास, हमें ये याद रखना है, हमारे पास एक विकल्प है सदा के लिए, हर एक चीज को अलग रीति से देखने के लिए, समझने के लिए। जब हम खो जाते हैं इस दुनिया में, जैसे कि वो जो लैंड का, पिग का एग्जाम्पल था, तो हमारे पास पारस का विकल्प सदा के लिए है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं। जब हमारे पास विकल्प है और हमें लगता है कि हम दूसरा विकल्प ले सकते हैं, तो आप थोड़ी मोमेंट्स निकालें, बड़ा मैप देखें और कैसे अपने आप हर चीज फॉल करेगी। तो ये मैटर नहीं करता कि जैसे लैंड में क्रैक्स है, हम सब के पास क्रैक लैंड है, वो हम एक्नोलेज करते हैं, परंतु पारस बुद्धि जो है वो सदा के लिए हमें वापस सच्चे दृष्टिकोण में वापस लाएगी। और तो ये सारी जो ब्यूटी है हाथी की और उसके आसपास, वो हम देख पाएंगे। तो ये इस सुबह हम इस बात को याद रखेंगे और हमें एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। विज्ञान जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर होता है, प्रयोग के आधार पर होता है। उसी तरह आध्यात्मिकता भी एक प्रयोग है, आप प्रयोग करके देखें। मैं आप सबको एनकरेज करती हूँ और आप देखें उसका परिणाम क्या है। शुक्रिया। और ऑल्सो अप्रिशिएट करना कि वापस हम कहानी में आए, और तो हमें इवन तो ये जो युक्ति है कि वापस हम लोअर कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम फिर से हायर कॉन्शियसनेस माना ऊंची स्मृति में चले जाए, तो ये खेल चलता रहेगा। लेकिन हम अगर ये मेडिटेशन अभ्यास करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि हम ये जो 1 मिनट का जो अभ्यास है पूरे दिन में, जैसे मान लो हर घंटे एक बार, तो वो आपको पारस में शिफ्ट करेगा और आपको एक नशा रहेगा, फकुर रहेगा कि आपने एक खोई हुई जमीन को ढूंढ निकाला। तो सभी का हार्दिक स्वागत है वापस। तो प्रशांत भाई को वापस वेलकम करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया मिलिंदा बहन का, बहुत ही स्पष्ट सार हमको बताया। तो अभी तक हमने जो देखा वो एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल हर एक व्यक्ति का, जब हम कहते हैं, देखते हैं बड़ा मैप, तो जैसे कि यूनिवर्स पॉजिटिव है। मुझे ये दिव्यता वाला शब्द बहुत अच्छा लगता है, डिवाइन। तो पास्ट में ये डिवाइन शब्द से बहुत रेजिस्टेंस था, परंतु ये एक सही शब्द है इस डायमेंशन स्तर को समझाने के लिए, क्योंकि वो सदा के लिए ऑस्पिशियस है, ऑथेंटिक है, शुभ है। सब कुछ वहां स्पष्ट है, क्लियर है, ऑथेंटिक है। तो ये हर एक का एक स्वभाव है। रिच मतलब बड़ा दिल, बड़ा हेड। तो एज ए मनुष्य जो है, हम अगर हम इस बात को समझते हैं तो सब सब चीजें सुंदर है। और भौतिक दुनिया जो है वो स्मृति में जो होता है उसका रिफ्लेक्शन है। परंतु ये जो ज्ञान है वो कहता है कि मनुष्य परिवार जो है वो एक अलग दिशा में जा रहा है, हम इस दिशा को बदल रहे हैं। तो वो बहुत सुंदर बात है, वो भी सुंदर बात है। हम एक और कहानी आपके लिए, एक और कहानी है। ये कहानी जो है एक हनी भी है, मधुमक्खी, वो मध को एकत्रित कर रही है, एकत्रित कर रही है वो अच्छे अच्छे गार्डन से। और उसे हनी पॉट मिलता है, एक पॉट मिलता है, तो उसको हनी पॉट मिलता है मध को रखने के लिए। तो वो खुश हो जाती है, परंतु अभी तक ये अच्छा है, परंतु अगला दृश्य ये है कि ये जो मधुमक्खी है, हनी भी है, वो हनी पॉट में फंसती जाती है। जब वो फंसती जाती है तो उसका जो वो जो मध है वो उसके नाक में सब जगह पे जा रहा है। तो तो उसके लिए ये सफलता नहीं है, वो फंस जाती है। तो अभी वो सफोकेशन फील करती है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता है क्योंकि अच्छी तरह से वो ब्रीद नहीं कर पा रही है। तो ऐसी हनीबी के लिए, मधुमक्खी के लिए, उस हनी पॉट से बाहर आने के लिए प्रायोरिटी है। उसे अब ज्यादा मध नहीं चाहिए, परंतु उसे मध के जो पॉट है उससे बाहर आना है क्योंकि वो फंस रही है। तो वर्तमान में ये जो ह्यूमन रेस है, मनुष्य की दौड़ है, हम कुछ ऐसे ही हनी पॉट में फंस रहे हैं। ये जो बॉक्स है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, वो जैसे कि हमारे लिए एक हनी पॉट है, मध मध का बॉक्स। अगर आप उसको देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, परंतु तो हमारी ये कहानी भी वही है कि ये जो हमें ये जो भौतिक दुनिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड है, वो हमें गिफ्ट में दी गई है, परंतु ये जो हनीबी है, मधुमक्खी है, उसे मुक्त रहना है। अगर वो अज्ञान में लाइन को क्रॉस करती है और हनी पॉट में फंस जाती है, तो वो मध को भी एंजॉय नहीं कर पाती है क्योंकि उसके लिए सफोकेशन है। परंतु निश्चित रूप से हम विंग को उपयोग नहीं कर सकते जब हम फंसे हुए हैं। इसीलिए हम जब स्टेप बैक करते हैं, उस पॉट से बाहर आते हैं, तो हम एक आकाश से परे आकाश को डिस्कवर करते हैं, ढूंढते हैं, और हम वापस अनुभव करते हैं इस सुंदरता का। और हम उस आकाश से परे आकाश का भी अनुभव करते हैं, और हनी पॉट में जो हनी है उसकी सुगंध भी लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप आर्टिस्ट हैं, तो आप एक अच्छी इमेज बना सकते हैं हनी बी और हनी पॉट की। कुछ एक होमवर्क इस आपके लिए, वो है 4 स्टेप्स। 4 स्टेप मेडिटेशन आप अभ्यास करना, सिर्फ 1 मिनट नहीं, 4 मिनट करना, 1 मिनट 1 स्टेप। तो ये जो 4 मिनट में क्या होता है, आपका दृष्टिकोण है वो बदलता है, और हमारा दृष्टिकोण है वो तो हमारा जो आई है, हमारी पहचान है, वो भी कहानी में फंस गई है। तो ये एक नया दृष्टिकोण है जो वास्तव में सत्य है, वो है हम एक अदृश्य मेहमान है। जैसे कि हम कोई भी बात से प्रभावित नहीं हो सकते, वो हमें ग्रास्प करना है, अनुभव करना है। हो सकता है 1 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, परंतु हमें ये ग्रास्प करना है, अदृश्य मेहमान का, अदृश्य यात्री का, अनपॉल्यूटेड, मतलब और कोई दृष्टिकोण से प्रभावित ना हो, 100% ये अनुभव करना है। तब आप देखेंगे इस बात, इसका अद्भुत अनुभव करेंगे। तो आप जैसे जैसे ही आप ये दृष्टिकोण बदलेंगे, तो सब कुछ बदलता दिखेगा। कभी कभी हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि फ्लावर है, गार्डन में फूल है, अगर आप एक मर्चेंट को दिखाते हैं, और आर्टिस्ट को दिखाते हैं, बॉटनिस्ट को दिखाते हैं, साइंटिस्ट को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो हर एक उस फ्लावर को अलग अलग रीति से देखेगा। अगर आर्टिस्ट देखेगा तो वो ब्यूटी देखेगा, सुंदरता को देखेगा। मर्चेंट है, वो उसको बेचने का सोचेगा, पैसा कमाने का। दूसरा है, वो ग्राइंड करके मेडिसिन बनाने का सोचेगा। हर एक अपनी अपनी रीति से देखेगा, सोचेगा। एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही फूल है, परंतु दृष्टिकोण अलग है। यहां पर भी सेम दुनिया है। अगर वो अदृश्य यात्री उसे देखता है, तो आप ये स्काई का और अर्थ का, दोनों का वंडर देखते हैं, और आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। मैं अभी कुछ एक कमेंट्स अगर है, क्वेश्चंस है तो मैं सुनने के लिए अभी रेडी हूँ। मुझे ये एग्जाम्पल उदाहरण अच्छा लगा कि जैसे हम देखते हैं तो अगर हमारी वृत्ति बदलती है तो भौतिक दुनिया बदलती है उस अनुसार। जैसे बिलिंदा बहन कह रहे थे कि हम कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में हैं, परंतु हमारा एम है, हेतु है, हम खुद को एम्पावर करें इस बड़े मैप को देखने के लिए, पारस, पारस का पर्सपेक्टिव। तो वो हमें बहुत स्पष्ट बात बताता है। और जैसे कि क्योंकि कभी कभी मेडिटेशन को रिलैक्सेशन की तरह से देखा जाता है, ये जो पारस का आइडिया है उसके लिए एप्रिसिएशन था। क्वेश्चन जो है कनेक्टेड नहीं है परंतु आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है ब्रह्मा कुमारी के व्यू में? जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंटेलिजेंट होते हैं और ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो होता रहता है। ब्रेन भी जैसे एक प्रकार का कंप्यूटर है, बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, परंतु अदृश्य कॉन्शियसनेस, अदृश्य यात्री ये कंप्यूटर को उपयोग करता है। जैसे कि अभी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, तो अदृश्य यात्री वो एक कॉन्शियस बीइंग है, चैतन्य बीइंग है, वो ब्रेन को उपयोग करता है, वो एक और कंप्यूटर को भी उपयोग कर सकता है ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ, परंतु कंप्यूटर्स खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और खुद डिसाइड नहीं कर सकते। कंप्यूटर का रिएक्शन होगा परंतु वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो अदृश्य यात्री जो है वो डिसीजन मेकर है, वो अनुभव करता है और इस अनुभव के आधार पर और चीजें फॉलो करती है। तो कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो एक अदृश्य लेवल पर है, वो फिजिकल लेवल पर नहीं है। हमारा एक सेशन होगा, आई थिंक हमारा अगला सेशन जो है वो हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में हम देखने वाले हैं। उसमें भी आपको इस प्रश्न का और जवाब मिलेगा। हाँ, शुक्रिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो। तो कोई कमेंट आप करेंगे? अलग-अलग मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है और ये प्रैक्टिस तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस में पारस ना हो? तो व्यक्तिगत रीति से मुझे ये अलग-अलग मेडिटेशन के बारे में ऑफर कर रहे हैं वो नहीं पता होगा शायद, परंतु सभी मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है, अभ्यास है, उनका एक सकारात्मक एंड रिजल्ट होता है। तो कुछ न कुछ बेनिफिट होता है उससे। यहाँ पर हम महत्व देते हैं एक एस्पेक्ट को, वो है वो स्मृति परिवर्तन का। तो ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म हेतु है, लंबे समय का एम है। तो फिलोसफी ये है कि हम बहुत समय से गिरती कला में गए हुए हैं, तो अभी हम वापस चढ़ती कला में आना चाहते हैं। तो हमारी यात्रा लंबी है। ये ज्ञान में अदृश्य यात्री यात्रा कर रहा है, उसकी उसका जो जीवन है वो एक, तो इस बड़ी समझ के साथ ये बहुत ही गहरा बदलाव आता है स्मृति में, आत्मा में, और आप इसके लिए विधि अप्लाई करते हैं, तो ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ध्यान है, मेडिटेशन है ऑफ कोर्स, परंतु वो जैसे कि एक जीवन के बारे में है। हम ये एक एक मिनट का इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, परंतु हम ये जो ज्ञान है वो बहुत गहरा है, उसका हम स्मृति परिवर्तन करने से अनुभव करते जाते हैं। तो ये मेडिटेशन से भी और कुछ ज्यादा है। शुक्रिया, बहुत सुंदर। तो आगे के सेशंस में हम समझेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं ना कि लाइन को क्रॉस करना, डॉटेड लाइन वगैरह। तो जीवन जो है वो इतना शैलो हो जाता है कि संपूर्ण रीति से एक खुद के बारे में एक गलत फहमी होती है कि हम कौन है। तो जैसे कि एक बहुत शैडो वाली जीवन है, अंधेरे में है ऐसे। तो हम यहाँ पर वो महत्व देते हैं, फर्स्ट हम सच्ची पहचान में वापस आ जाए, सत्य में स्थित हो जाए, हम इस एरिया पर महत्व देते हैं इस सेशंस के दौरान। और हम, मैं सोच रही थी कि तो कुछ एक मेथड है जिसमें कहते हैं कि हेलीकॉप्टर व्यू, तो इस तरह से हम, तो रोल जो हम प्ले करते हैं स्टेज पर, वो कभी कभी हम सीरियस और इंटेंस फील करते हैं। हो सकता है वो परिवार की जवाबदारी है और जनरल, तो हम स्टेप बैक कर सकते हैं और फिर हम रोल को देख सकते हैं। तो हाँ, हम वहां पर है, इन्वॉल्व है, परंतु वो हमें प्रभाव नहीं डालता है। तो जैसे कि जो खुद की एक गहरी जरूरत होती है वो हम अनुभव करते हैं, जैसे कि बेलिंदा बहन ने कहा कि ये कुछ प्रयोग करने जैसी बात है। तो आप होमवर्क को फोर्थ स्टेप मेडिटेशन का प्रयोग करना, और जो फोर स्टेप मेडिटेशन है वो गूगल ड्राइव में वो जो दिया है आपको उसमें शेयर करेंगे। ओके, होमवर्क, होमवर्क में समय निकाले आप इस अभ्यास के लिए, और मैं आपको एनकरेज करता हूं कि ये कहानी है वो आप आपके एक मित्र को जरूर बताएं। तो स्टोरी को याद रखो और एक्सप्लेन करो किस कहानी का मतलब क्या है। आप देखो उनका रिएक्शन क्या है, वो आपके लिए सीखने का एक विधि होगा। तो हमारे पास जरूरी इनफ होमवर्क है आज के लिए, हम मिलेंगे जल्दी फिर से। शुक्रिया। तो कल हमारे पास एक कल जो व्यक्ति था वो ब्रांचेस को होल्ड कर रहा था और आज हनीबी के बारे में बात की। आपका सभी का अगले 24 घंटे बहुत अच्छे बीते, उससे हम अभी हम एंड करते हैं। ओम शांति।